ओम शांति। आज मुझे कहा गया कि अपना अनुभव सुनाइए। अनुभव तो बहुत लंबी यात्रा का लंबा ही होगा, परंतु आप क्या सुनना चाहेंगे तो हम उस रीति से ही सुनाऊंगी। अगर मेरे ब्राह्मण जीवन की, ईश्वरीय जीवन की, जन्म की जन्म पत्री सुनना चाहेंगे तो मैं वो सुनाऊं? मुझे कैसे अपने गोद में मेरे बाबल ने मुझे बुलाया अपना बना के, मुझे ईश्वरीय जीवन जीना सिखा दिया, कला जीने की सिखा दिया। तो आप जरा मुझे हाथ खड़ा कर कीजिए बताएंगे कि वो सुनना आप पसंद करेंगे। मेरा ईश्वरीय जन्म कैसा हुआ? अच्छा, ऐसा लगता है मैं नजदीक से सभी के मुखड़े देखूं, क्योंकि बहुत समय के बाद हम सब बिछड़े हुए मिले हैं। तो कम से कम मैं अपनी रूहानी भाइयों का दर्शन तो करूं, तो मुझे दर्शन करने की प्यास है। तो जो भी पीछे बैठे हैं, मेरी वो प्यास मैं आश रखती हूं जरूर बुझाएंगे पीछे बैठने वाले। अच्छा, हम अपने जीवन की बेला सुनाती हूँ। मेरा बहुत छोटे गांव में इस स्तन का जन्म हुआ और कट्टर सिखों के घर में जन्म हुआ, जो ऐसा कट्टर धर्म है वो उनकी कोई खोपड़ी ऊपर से उतार देवे तो भी वो अपने धर्म को चेंज नहीं करते हैं, कहां आंख उठा के भी नहीं देखते। और मेरा तो खास ये गर्व था मुझे, मैं कभी देवी देवताओं के मंदिरों के आगे से भी गुजरती नहीं थी। मुझे ये होता था ये हिंदुओं के गुरु है, हम सिख हैं और सिखों के लिए जब वो अरदास करते हैं, जैसे मंदिर में आरती उतारते हैं ऐसे गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, तो उस अरदास में कहते हैं राज करेगा खालसा। खालसा वो उसको कहते हैं जो सिख धर्म में जन्म लेने वाले और पगड़ी बांधने वाले, उसको वो खालसा बोलते हैं। तो मुझे ये गर्व था कि हमारा ही राज्य तो होने वाला है, ये सब चले जाएंगे। लेकिन मेरा जन्म लौकिक रीति में भी जिस पिता से हुआ, अलौकिक जन्म भी देने के वही निमित्त बना। मैं और हमारे दर्शन सिंह भाई और एक कैलाश बहन है, शायद उसको कोई पहचानते होंगे, वो अहमदाबाद में गांधीनगर के सेंटर पर संभालने वाली बहन है। हम तीन का त्रिमूर्ति का एक ही सेंटर से जन्म हुआ है और तीनों ने ही ईश्वरीय जन्म को उसके हवाले कर दिया। किसी ने कहा, काना वो काना मैं आन पड़ी तेरे द्वार, और हम तीनों ने कहा, ए भोलेनाथ हम आन पड़े तेरे द्वार। तो पहला जन्म लौकिक फादर का, जो बहुत अच्छे ही विद्वान थे, उनका नाम कोई नहीं पुकारता था, उनको सब ज्ञानी जी करके पुकारते थे, बहुत ज्ञानी ज्ञानी थे। पहले उनको मीठे बाबा ने अपना बना लिया। अगर वो ना जन्म लेता, वो ना ईश्वर को पहचानता, तो फिर मेरा बस का रोग नहीं था कि मैं वहां से निकल करके कोई अपना ईश्वरीय जन्म सफल कर सकूं, और ना ही मुझे इस संस्था का कुछ पता था कि ये कोई संस्था भी है, कोई नॉलेज नहीं थी उस चीज की। लेकिन वो हमें जब ज्ञान सुनाते थे, 2 साल या 2.5 साल पहले मेरे से उनको ज्ञान मिला, जब वो आके ज्ञान सुनाते थे तो मैं सुनना पसंद नहीं करती थी। सुनाते थे तो हम लौकिक, मेरी बड़ी बहन थी और भाभी थी, उनको भी उठा करके ले जाती थी, चलो इशारा ही करती थी, बाप के लिए रिकॉर्ड तो बहुत था, उनको सिर्फ इशारा करती थी, कुछ कुछ बोल करके उठा लेती थी, ज्ञान नहीं सुनना पसंद करती थी। और ये मुझे पता था कि इन्होंने ऐसा ज्ञान लिया है, यहाँ कांदा और लहसुन नहीं खाया जाता और किसी के हाथ का भी नहीं खाया जाता, तो उनको जानबूझ करके भी अगर थोड़ा लहसुन डालना है तो जास्ती भी लहसुन डाल करके उनके भोजन को खिलाती थी उनको। ऐसी मेरी गति थी, दुर्गति ही कहूंगी उस समय की, पर फिर भी मैं उसकी थी। उसने मुझे कैसे बनाया, और एक दिन मेरे लौकिक फादर सर्विस करते थे, और बाकड़ा डैम कभी किसी ने सुना है, जैसे बाकड़ा डैम है इसी प्रकार से वो सतलुज नदी पर है, और दूसरा डैम ब्यासा नदी पर बना है। और पहले उन्होंने बाकड़ा डैम आरंभ में ही, स्टार्टिंग में ही मेरे लौकिक फादर के हस्तों से बना, वो बन के पूरा हो गया, फिर गवर्नमेंट ने उधर उनकी ट्रांसफर किया, तो वहां पर उनको ब्यासा नदी पर जो डैम बन रहा था तो उधर चले गए। परंतु हमको वो कभी साथ नहीं रखते थे, परिवार को साथ में नहीं रखते थे, बहुत बहुत अंडरग्राउंड उन्होंने हमें रखा हुआ था, गांव में रहते थे। लौकिक माँ को ये था कि बच्चियों को अपने साथ में ही रखो, घर में रहो, और 15 दिन के बाद में वो घर में आते थे। तो जैसे ही 15 दिन के बाद में आते थे, तो हम तो उनके साथ में इस प्रकार से ही व्यवहार करती थी, उनको ठीक खिलाती पिलाती थी, कांदे लहसुन वगैरह वगैरह। आखिरीन भी कुछ दिनों के बाद छुट्टियां का दिन था, बच्चों की छुट्टियां आई, तो मैं 2-4 जो भी बहन भाई थे उनको लेकर के और एक मास के लिए गई कि पापा जी के पास में हम बच्चों को छुट्टियों में लेके जाती हूँ। और पहले जमाने में जो त्रिमूर्ति झाड़ है यही बस चित्र थे, दूसरे चित्र नहीं थे, और कोई भी चित्र नहीं था। आज तो बहुत दुनिया भर के चित्र निकल आए हैं, उस समय ये 2 ही चित्र थे। तो लौकिक फादर ने वो चित्र खरीद किए थे, बहुत बड़े बड़े चित्र थे, ये जितनी खिड़की है इस खिड़की जितना वो चित्र होगा, परंतु कैलेंडर रूप में चित्र होते थे बड़े बड़े चित्र। तो त्रिमूर्ति का चित्र फट गया था, फटा हुआ लटक रहा था, किनारा एकदम टूट गया, पट्टी निकल गई और टूट गया, तो लटक रहा था। और मैं अकेली थी घर में और झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते मुझे जैसे ही वो मैं चित्र के नीचे आई, तो पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा विचार आया, झाड़ू वहां का वहां छोड़ करके और हम खड़ी होकर के उस चित्र की तरफ निहारने लगी, देखने लगी। तो जैसे ही मेरे बाबल की नजरें मेरे ऊपर पड़ी और मैंने बाबल की नजरों की तरफ देखा, मुझे उन कागज के चित्र के अंदर जो मीठे बाबल की शब्द थी, उन नैनों से मुझे प्रकाश नजर आया। ऐसे प्रकाश नजर आया जो मेरे दिल से निकल गया, अंदर से एक्सेप्ट कर लिया, सत्य पाप है तो ये है, ये मन से एक्सेप्ट कर लिया, निकल गया। नहीं कोई जानती थी, नहीं पहचानती थी, नहीं कभी ये सुना था जो किधर ज्ञान में जाते हैं, देवियां बनने का जो पाठ उधर पढ़ के आते हैं। और बड़ी बहन मेरे को बोलती थी कि पता नहीं ये किधर जाकर के फंस गया, जाकर के देखो, क्योंकि देवी देवताओं को मानते ही नहीं थे और बहुत मतलब बुरा भला बोलते थे देवियों के लिए लौकिक फादर। तो उसने कहा, कहां तो ये बोलता देवियां बनने का उधर ज्ञान मिलता है, कहां तो ये बोलता था कि ये देवियां ऐसी है ऐसी है ऐसी है, और कहां ये बोलता है अभी ज्ञान देवियां बनने का देवता बनने का मिलता है, तुम चल के सुनो। ये मालूम नहीं उसका दिमाग कैसे खराब हो गया, पढ़े लिखे बहुत थे वो, और पता नहीं इसका दिमाग किसने खराब कर दिया। देख के आओ जाके मेरे को, मेरी लौकिक बड़ी बहन ने बोला, देख के आओ ये कहां फंस गया जाकर के। तो मेरे को भेजा देखने के लिए, और जहां पर गीता पाठशाला थी वो भी परिवार वाली ही थी माता, और वहां जैसे गई उनको लेके गए मेरे को, और वहां से भी बुरा ही उठा करके आई। पर थी तो मैं उसकी ना, तो बीच बीच में सुनती थी कि उस पिता का न चरण है न हस्त है, और मतलब मनुष्यों जैसा वो पिता नहीं है, निराकार है। थोड़े समय के बाद मुझे बहुत सुखी जीवन था, इतना सुखी जीवन था, कभी कोई सहेली सखी तो कभी देखी भी नहीं थी, हमने बनाई नहीं थी, और घर में ही हम बहुत प्यार से रहते थे, सारा परिवार जैसे आनंद में थे, तो बाहर जाने की दरकार ही नहीं थी कोई। तो जब आनंद था तो फिर पता नहीं वो आनंद में मेरा थोड़े समय के लिए कैसे गुम हो गया। तो फिर मैं उसको दिल से पुकारना शुरू किया, ऐ भगवान मैंने सुना है कि तेरे चरण नहीं तेरा हस्त नहीं पर हृदय है, उस हृदय में मेरे को रख ले। रोके 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 उसको ये कहा, अब तुम मेरे को उस हृदय में अपने में रख ले। तो आप सभी को ये मैं बताऊं कि कहां उसको तड़फ तड़फ के पुकारा और कहां जाके चित्र के आगे खड़ी हो गई और उसने मुझे अपना लिया, गले लगा लिया। बस ये थी मेरी जीवन यात्रा, और ऐसा जीवन बना करके मुझे जीना सिखाया। फिर आरंभ हो गई वहां से यात्रा। एक दिन का मेरा परिवर्तन है, किसी ने 10 दिन लगाए होंगे। मैंने 7 डे का लेसन अभी तक लिया नहीं है, वो मेरा अधूरा ही है। किसने कितने दिन समझने के लिए लिए होंगे, किसी ने किसी कितने दिन लिए होंगे। मैंने बस एक को समझ लिया, जैसे मैंने कल आपको सुनाया था ना कि बाबा ने कहा है कि बच्चे बाप तुमको देखे, तुम बाप को देखो। बाबा तुमको देखता है, तुम बाप को ही देखते रहो। बस मैंने एक ये बात पक्की हो गई मेरी। वो समय जे बाबा ने पाठ नहीं पढ़ाया था, परंतु अंदर से उसने पाठ पढ़ा दिया था। एक दिन के अंदर मेरा परिवर्तन हो गया। ये मुझे पता था कि बाहर का खाता नहीं है मेरा लौकिक फादर, लैट्रिन जाके स्नान पानी करते हैं। ये मेरे को जो भी ऊपर की छोटी छोटी चीजें थी, धारणा थी, ये मुझे पता चल गया। किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, स्नान करते हैं और बस। किसी की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं रही। अपने आप फर्स्ट दिन से ही मेरा परिवर्तन हो गया। मुझे कठिनाई नहीं लगी, मेरे को किसी को कहना नहीं पड़ा कि तुम ये त्याग दो, तुम ये कुछ कर दो। मुझे एक सिर्फ सोने की पुल्ली इधर वो पड़ी थी नाक में, और जिस माता से मुझे थोड़ा सा वो ज्ञान मिला, उसको बोला ये मेरी निकाल दियो। और यहाँ पर वो जो सिख लोग कड़ा पहनते हैं ना, कड़ा सब बोलते हैं, इधर कुछ कंगन पहनते कड़ा, उसको स्टील के वो पड़े थे मेरे को दोनों ही हाथों में, निकाल करके वो फेंक दिए। अच्छे नहीं लगना शुरू हो गया, और नाक से बोला ये मेरा निकाल दो। तो बोले लोग क्या कहेंगे, तेरा बाप हमारे साथ में झगड़ा करेगा, कहेगा मेरी बच्ची को उल्टा पाठ पढ़ाए दिया। मैं गई अंदर, छोटा सा स्टोर था, उधर गई जाकर के ऐसा तोड़ करके और उसको निकाल दिया डोरी डाल करके। तो उसको बोला बाहर आके, देखो मासी जी आपको कितना मैंने बोला कि मेरा जी निकाल दियो, अगर आप निकाल देती थी तो आज मेरा वो गुम नहीं होता था ना, मेरा गिर गया वो गुम हो गया, नहीं तो शिकायत करती थी वो बाप को कि इसने खुद ने ऐसा शक किया। वो भी मैंने युक्ति से सब, मतलब आपको कहती हूँ कि मेरा एक दिन का परिवर्तन है ये। दूसरा दिन नहीं मैंने लाया परिवर्तन अपने को लाने के लिए। फिर थोड़े ही दिन हुआ तो यहां पर रहते थे, और वहां पर प्राइवेट मकान नहीं मिलते थे, और जलंधर से मैंने आती थी वहां क्लास कराने के लिए, और परिवार किसी परिवार के घर में गीता पाठशाला चलती थी। तो कुछ दिन के बाद में बहने आई और उसके घर में क्लास चल रही थी, और दो बहने, एक बड़ी दीदी और उसके साथ में छोटी एक। तो जैसे ही हम क्लास करने के लिए गई, थोड़े ही दिन हुए थे अभी, तो मैं क्लास करने के लिए गई, और पहले जमाने में ग्रामोफोन बजाते थे, रिकॉर्ड बजते थे। तो जो छोटी थी वो ग्रामोफोन बजा रही थी, और जो बड़ी थी वो तख्त पर बैठ के क्लास करा रही थी। तो बड़ी दीदी की नजर सारी मेरे ऊपर थी, तो मैं वो जो ग्रामोफोन बजाती थी उसके बाजू में ही बैठी थी। तो मैं उसके कान, मेरे को इतना अच्छा उनका जीवन लग गया, इतना अच्छा जीवन लग गया, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। तो मैंने उसको बोला दीदी आपके पास में कुछ पुड़िया है, अगर कोई पुड़िया हुए तो मेरे को पानी में घोल के पिला दो, मिक्स करके पिला दो, तो मैं जल्द से जल्द आप जैसी बन जाऊं। तो दीदी क्लास कराते कराते कहते बड़े दीदी कुशलता ये क्या बोल रही है। तो वो हंस के बोलती है दीदी बहन जी ये बोल रही है कि मेरे को पुड़िया पानी में मिक्स करके पिला दो, मैं आप जैसी बन जाऊं। हंस पड़ी, वो भी हंसी, देखी दृष्टि डाली मेरे ऊपर, पढ़ गई, पहले से ही देख रही थी। फिर दूसरे गांव में गई, उधर भी हम उसके साथ में गए, उधर भी एक परिवार रहता था। जब उसके परिवार के घर से वो क्लास वगैरह निकले जलंधर जाने के लिए, हम पैदल पैदल करके रोड पर आए तो बस में वो बहने बैठी, पहले ऐसे ट्रेवलिंग करती थी बसों में, तो जैसे ही बस में गई, अभी बाप को बोल तो सकती नहीं थी कि मैं दीदियों के साथ में जाऊं, मेरे को आप छुट्टी देंगे, परंतु अंदर इतनी तड़प, ऐसा लगे कि जो पीछे बस के सीढ़ियां होती है ना, मैं उनके साथ लटक के इनके साथ में चली जाऊं, इतनी तड़प लग गई। ऐसे करते कराते थोड़े समय के बाद में, दो चार मास के बाद में या छह मास के बाद में ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, तो बहनों को बुलाया, तलवाड़ा करके उसका नाम था, उधर बुलाया, तो मकान नहीं उधर प्राइवेट मिलते थे, तो एक कुमार था उसका मकान था, क्वार्टर था उसको गवर्नमेंट का मिला हुआ, और वो किसी दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो गया, तीन मास के लिए बहनों को रखा वहां। तीन मास तो यूं बीत गए, लेकिन जब हमको पालना मिलनी शुरू हो गई, फिर कैसे ऐसे होगा कि वो बहने हमको पालना देवे और हम बहनों को जाने देवे। फिर अभी उस कुमार को तो देना था वो मकान, सभी को खाली करके वचन दिया हुआ था, देना था, तो मैं लौकिक फादर को कहने लगी, पापा जी आप सेंटर के लिए अपना क्वार्टर दे दो ना। वो अंदर समझे कि मैं अपना क्वार्टर दे दूं, पर बोलूं कैसे, ये जाकर के मेरे लिए समझे, ये जाकर के अपनी माँ को बोलेगी, कहीं इसकी माँ मेरे से झगड़ा ना करे। पर बाबा मेरे मुख से घड़ी घड़ी ये कहलाते थे, पापा जी दे दो ना, आप लिख कर दे दो ना अपना क्वार्टर, ताकि बहने नहीं जावे जहां से, और आप लिख करके दे दो ना। पर फिर अंदर डरूं, अगर घर में जाकर के पापा जी ने गुस्सा किया तो तू मेरे को सारी सभा के बीच में क्यों बोला ऐसा। आखिरीन भी बहनों को दोनों ही लौकिक, पुत्री और पिता का एक ही संकल्प हो गया और उनको मकान दे दिया, और उन्होंने एक जो नीचे कंपाउंड था उसमें छोटी सी कुटिया बना करके रहना शुरू कर दिया, और मैं तो बहनों के साथ में ही रहती थी। फिर क्या हुआ, बहनों के साथ में रहती 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 क्या हुआ, जब बरसात आती थी ना, तो वो कितना भी उन्होंने अच्छा रूम बनाया था, पर सारा पानी अंदर आ जाता था, बाहर निकलता ही नहीं था पानी। तो मैं तो दीदियों के साथ में ऊपर रहती थी, और वो बरसात में पानी के कारण अंदर बहुत बदबू हो गई थी, वो बस होती है ना उसकी, बरसात के पानी की। तो जैसे ही दीदियां कभी कभी ऊपर से उतरती थी, तो मैं लौकिक फादर का भोजन कभी कभी बनाने आती थी, या कपड़ा धुलाई या सफाई करने के लिए ऊपर से उतर के आती थी, तो वो मेरे पीछे कभी कभी दीदियां आती थी, तो कहती कैसे अंदर घुसती कैसे है तू। मैं उनको हाथ जोड़ के कहती थी, दीदी प्लीज मेहरबानी करके आप मेरे सामने ऐसा नहीं बोलो। तो अंदर डर जाती थी कि कहीं ऐसा ना मेरे मन में आ जावे, मैंने नाहक ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मैंने उल्टा काम कर दिया, मेरे मन में कहीं ऐसा कमजोरी का संकल्प ना आ जावे, दीदी मेरे सामने प्लीज ऐसा नहीं बोलो, उनको बोलती थी ऐसा। उस मकान के पीछे आज मैं आपको ये बताऊं, हुलास नगर के अंदर बहुत क्लासेस चलती है, 25 क्लासेस बाहर चलती है, 7 सेंटर्स हैं, बाकी क्लासेस हैं, और किसी भी क्लास का सेपरेट सेपरेट क्लास है। कोई ऐसे नहीं किसी माता के घर में क्लास चलती है, किसी परिवार के घर में क्लास चलती, बिल्कुल भी नहीं, पसंद ही नहीं करूं मैं ऐसे परिवार वालों के बीच में, क्योंकि परिवार तो परिवार है ना, फिर भी सेपरेट सेपरेट चलती है। आज दिन तक मैंने ना किसी मकान का किराया दिया, और ना ही मुझे चिंता होती ना ही लाइट बिल, ना कोई किराया, ना कोई हाउस टैक्स, कुछ भी नहीं। ये किसका रिटर्न बाबा दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? तब कहते हैं भक्ति मार्ग में, तब कहते हैं एक देवे, लोगों ने कहा दस पावे, ये कहा है ना एक देवे दस पावे, पर बाबा ने कहा है बच्चे तुम एक संकल्प तो बाप की सेवा के प्रति लगा दो और मैं पद्म दे दूंगा तुमको, मुझे यहां ही वो पद्मों की अनुभूति कराते हैं, इधर ही पद्मों की अनुभूति कराते हैं। ऐसे कोई सेवा मीठे बाबल की करके देख लो, कोई सेवा के अंदर संकल्प ले करके देख लो वो क्या करवा के और देता क्या है, क्योंकि उसको किसी से लेने की कोई इच्छा नहीं हो, तो खुद दाता है ना, देने के लिए आया है। ये मेरा निजी अनुभव है, प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। और धारणाएं, ऐसी धारणाएं आज पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, मेरा आज दिन तक ये रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने बाहर का कभी बिस्लरी का पानी भी पिया हो। और तो पीछे ही बात रही, बिस्लरी नहीं कभी मैंने पिया। कल मैंने कल के पर कल ही सुनाया ना कि पहले वाली इतनी ईंटें पक्की क्यों हो गई, क्योंकि मीठे बाबा ने ऐसा अंदर फाउंडेशन मजबूत डाल दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी ये नहीं आया कि कहां तक जीवन बनाने में, कभी ये सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि पता नहीं कितनी लंबी यात्रा है, मैं तय कर सकूंगी या ना कर सकूंगी, सोच भी नहीं कभी, संकल्प ही नहीं। सृष्टि फाय में मेरा जन्म हुआ, अलौकिक, और 69 में मैं बाबल की गोद में पूर्ण रीति से स्वाहा हो गई। 6 मास हुए थे बाबा को अभ्यक्त हुए, और साकार बाबा के आगे जब भी आती थी तो रोके रोके कहती थी, बाबा मुझे यज्ञ में रहना है, मुझे ईश्वरीय जीवन सफल करना है, बाबा मुझे रहना है, बाबा मुझे रहना है। मैं जब भी आती थी बाबा के आगे एक ही मेरी अर्जी थी, और अर्जी मेरी और मर्जी उसकी। ऐसा उसने सफल करना शुरू कर दिया, फिर और निश्चय कैसे बिताया। लास्ट जब बाबा को 2 मास के बाद में अव्यक्त हो जाना था, 2 मास के पहले हम आई थी, और पंजाब के रहने वाले कौन कौन है जरा हाथ उठा, कोई है क्या पंजाब के रहने वाले? अच्छा इतने बैठे, अच्छा जलंधर आश्रम का पता है आप लोगों को? जलंधर का नहीं मालूम है, ठीक। तो जो जलंधर की बड़ी बहन थी ना, जिस जो मेरी नजर मेरे तरफ रख के कह रही थी कि कुशलता जी क्या बोल रही है तेरे को, उसके साथ में मैं बाबा के पास आई थी। तो बाबा उस समय मेरी अर्जी को मंजूर करके कह रहे थे, और राज बच्ची ये बच्ची बाबा को दे दो। बाबा की इस प्रकार से वार्तालाप होती थी। बाबा कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे को दे दो, बाबा ये ऐसे कहते थे कि ये बाबा को दे दो। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा इस प्रकार से बातचीत करते थे। तो वो मेरे को बोलना, बाबा को बताया, बाबा इसका लौकिक फादर है ना, बाबा अभी वापस। पर मेरे को उस समय बाबा ने कहा, बच्ची बाबा के पास बहुत स्थान खाली पड़े हैं, बाबा तुझे लखनऊ भेज देंगे, पटना भेज देंगे, बाबा तेरे को जयपुर भेज देंगे। बाबा ने तीन सेंटर का मुझे नाम वर्णन किया, परंतु दीदी ने उस समय कहा इसका लौकिक फादर से छुट्टी लेकर के, था तो वो बाबा का ही बाबा, उसको बहुत प्यार करते थे, पर फिर भी बच्ची है उसकी तो उससे पूछना तो पड़ेगा। आखिरीन भी चली गई। फिर जाने से ही मैंने लेटर लिखा और प्रदर्शनी करनी थी, लौकिक फादर ने भी बाबा को लेटर लिखा और मैंने भी लेटर लिखा। बाबा ने मेरे लेटर का जवाब दिया, उसके लेटर का जवाब नहीं दिया। मेरे नाम सहित बाबा ने कहा, बच्ची अब जल्द सेवा में उपस्थित हो जाओ, जल्द से जल्द। तो फिर 2 मास के बाद तो बाबा व्यक्त हो गए, बहुत बहुत इस चीज का ठेस अंदर कि मैं बाबा के होते होते मेरे को ये भाग्य नहीं मिला। आखिरीन भी 6 मास हुआ बाबा के पास आई। 6 मास के बाद दीदी, बड़े दीदी मनमोहिनी दीदी, उन्होंने राजबहन को लिख भेजा कि करतार सिंह भाई की बच्ची बहुत समय से बोलती रहती है, मेरे को सेंटर पर रहना है, राज पार्टी आ रही है, तुम उसकी बच्ची को साथ में ले आओ। तो मुझे वो ले आए साथ में। तो अव्यक्त बाबा गुलजार दादी के तन में आए ही थे, तो जैसे ही बाबा से मुलाकात करने के लिए गई तो क्या हो गया, उस समय बाबा ने एक बार कह दिया, बच्ची बाबा के पास तो बहुत सेंटर खाली है, परंतु बाबा नहीं कुछ भी कहते, जे तेरी दीदी दादियां जाने। मेरे मन में ये अंदर आ गया कि बाबा तो मेरे को कहते हैं ले जाने, भेजने के लिए, सेवा में सफल करने के लिए, पर मेरी दीदियां ही नहीं मेरे को आने देती। ये मेरे मन में पक्का आ गया, यही नहीं मेरे को समर्पण होने देती। फिर जब अर्पण होने के लिए आई तो अव्यक्त बाबा ने मुझे बुलाया, बुला के मेरे से संदली के पास में एकदम बुला के बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ जाएंगी, बाबा तुझे लखनऊ भेजे, बाबा जयपुर भेजे, जो साकार बाबा ने सेंटरों के नाम लिए थे वो ही अव्यक्त बाबा ने गुलजार दादी के तन में आकर के बोला। फिर तो 101% ये हो गया कि ये भगवान है, और भगवान ने मेरे को साकार में भी वही बोला था, अब अव्यक्त में भी वही ऑफर हो रही है, अब मुझे क्या करना है, चॉइस मेरी। बाबा को बोला, बाबा मेरे को जयपुर आप भेजो। फिर मुझे जयपुर बाबा ने भेजा। जयपुर से 4 मास रही, 4 मास के बाद फिर मैं मधुबन में आ गई, मधुबन में 7 मास रही, 7.5 मास। उसके बाद फिर बाबा की लौकिक बहू ब्रिज इंदिरा दादी बॉम्बे में रहती है, रहती थी साइन में, और वो मधुबन में आई और उनके साथ थोड़ी सी मेरी मुलाकात हुई, और लौकिक फादर का बिजनेस था और उसके बच्चों का बिजनेस था, तो वो भी बॉम्बे में रिटायरमेंट उनकी हो गई, जहाँ सेंटर दिया था मकान, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के पास बॉम्बे में आई। तो हमारे लौकिक घर में जहाँ सेंटर था वो ब्रिजेंद्रा दादी चक्कर लगाने के लिए बाबा ने भेजा था, जाओ तुम बच्ची चक्कर लगा के आओ। तो जैसे उसने देखा ना कि इतना अच्छा महल सेंटर के लिए दे दिया इस भाई ने, और खुद तो एक झोंपड़ा, तो मेरे को बोलने को नहीं अच्छा लगता, मतलब वो खुद तो कैसी कुटिया में रहता है, आके बहुत बाबा के पास महिमा किया। बाबा क्या उस बच्चे का त्याग है, उसका त्याग तो देखने जैसा त्याग है। आदि आदि तो दीदी को लौकिक फादर वहाँ ही पहचानते थे क्योंकि उसके घर में गए थे वो, और फिर यहाँ बॉम्बे में आए तो बॉम्बे में आकर के दीदी के पास में गए तो दीदी को ये बोला कि दीदी मेरी बच्ची मधुबन में है, मेरी इच्छा है कि आपके पास में वो बच्ची आ जाओ। तो दीदी ने जैसे ही उनके मुख से सुना तुरंत लेटर लिखा और बड़े दीदी को बोला फलानी फलानी बच्ची को आप भेज दो। बस 69 में पूर्ण रीति से समर्पण हो गए और 70 में बाबा की सेवाओं में बॉम्बे में हूँ और बॉम्बे में रह करके इस रीति से जो आपको सुनाया कि 25 क्लासेस चलती है और उनमें से 7 सेंटर हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, और इस प्रकार से मीठा बाबा सेवाएं ले रहे हैं। ओम शांति। अनुभव तो इतने अच्छे अच्छे बाबा क्या क्या कहा। बाबा ने एक बार कहा था बच्चे तुम बाप को यूज करो, और मैंने कहा बाबा आपको तो चोरों ने भी यूज किया तो साधुओं ने भी यूज किया, परंतु आपको तो सब यूज करते ही आ रहे हैं, बाबा आप मुझे यूज करो, आप मुझे यूज करो। अब वो कैसे कैसे मुझे यूज कर रहा है वो बहुत वंडरफुल चीजें हैं, वो आप सुनेंगे तो अजब लगेगा कि बाबा क्या क्या करवाते हैं। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।